सत्संग जी प्रेम से के नाम सत्संगत आज यहाँ महेंद्रगढ़ में आकर आप सभी के दर्शन करके बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि पहली दफ़ा ही यहाँ सत्संग इस रूप में करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जो 26-27 वर्ष पहले नारनौल सत्संग करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उसके बाद कई दफ़ा ध्यान भी आया लेकिन कुछ सबब नहीं बन पाया यहाँ आने का। इसके बावजूद के साल भर में 8 महीने दिल्ली से बाहर ही रहना होता है, जहाँ हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों में जाकर वहाँ के भक्तों के दर्शन करने के मौके मिलते हैं, जो इस सच्चाई के प्रचार प्रसार में अपना योगदान भी दे रहे हैं, उपकार भी कर रहे हैं। और इसके अलावा विश्व के चंद मुल्कों में भी जाने का अवसर प्राप्त होता है। जैसे अभी भी आपने रचना श्रवण की जहाँ वननेस का जिक्र हो रहा है, तो आज सुबह से ही ये ध्यान आ रहा था कि 5 अगस्त पिछले साल लंदन में गेम्स फॉर वननेस का आयोजन किया गया था मिशन के द्वारा, जो NIS समागम हुआ था, तो पूरा एक साल हो गया और वहाँ भी खेल के द्वारा ये सच्चाई का पैगाम इलाके के लोगों तक पहुंचाया गया, जहां पर लोकल इलाकों के मेयर भी आए और भी MPs भी आए और भी अनेकों नागरिक वहां के इसमें शामिल हुए। यूं तो NIS समागम 11 और 12 अगस्त को हुआ था बर्मिंघम में, लेकिन उससे पहले कुछ इवेंट्स वननेस के ऊपर आधारित इसको और मजबूती देने के लिए आयोजित की गई थी। तो आज अभी आपने रचना में इसी वननेस का फिर से जिक्र सुना है, यानी कि एकत्व जो आज बिखराव है, इंसान बिखरा हुआ है, इंसान बटा हुआ है, जाति मज़हब के नाम पर, कौमों के नाम के ऊपर छोटे छोटे दायरे बनाकर बैठ गया है। जहाँ पर प्रभु की इतनी व्यापकता है, वहाँ पर इंसान की उतनी ही संकीर्णताएँ ये सामने आ रही हैं। इसीलिए ये बटा हुआ इंसान वैर और ईर्ष्या नफ़रत के भाव से युक्त होकर जीता है। प्यार की गंगा बहाते चलो ये नारे ज़रूर लगे, लेकिन इंसान प्यार की भाषा भूल गया, प्यार भरा व्यवहार भूल गया और इसने धर्म मज़हब के नाम के ऊपर भी प्यार की बजाय मारकाट ही की है। तो इसलिए एकत्व का भाव कि सारा संसार एक परमात्मा की खलकत है, इसको अल्लाह कह लें, राम कह लें, अकाल पुरख कह लें, किसी नाम से भी इसको संबोधित कर लें, लेकिन ये एक परम अस्तित्व है और इस एक की ही संतान ये सारी मखलूक है। और तमाम धर्मग्रंथ, वेद, शास्त्र, गुरु, पीर, पैगंबरों की वाणी भी यही पुकार कर कहते हैं कि एक द्वैत तब पैदा होती है जब हम इस प्रकार से इस एक को एक करके मानते नहीं हैं और एक को एक करके जानते नहीं हैं। एक को एक करके जिसने जान लिया वो फिर एक को एक करके मान भी लेता है, और जिसने जाना नहीं है वो अनेकता को ही अभिशाप बना लेते हैं। जब प्रभु को ही एक मानने को तैयार नहीं है तो इंसानों के साथ तो फिर एकत्व का भाव इनका क्या रहेगा। जो परमात्मा को ही बांटने में लगे हुए हैं, पैगंबरों को बांटने में लगे हुए हैं, तो वो इंसानों को कहाँ पर एक करके देखते हैं या उनको एकता के सूत्र में बांधने के लिए प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो मिशन का नारा है कि एक परमात्मा ईश्वर निराकार इस अकाल पुरख के श्रमे हुए राम की अंश आत्मा के रूप में, नूर के रूप में हर घट में बसते हैं। और इसलिए जैसे कबीर जी ने भी कहा कि एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे, लोगा भरम न भूलो भाई, खालक खलक खलक में खालक पूर्यो सर्व ठाई, कि जमीन जमाग के बिखे समस्त एक जोत है, कि एक ही जोत जमी जमा में समाई हुई है, जलस्थ हुई थलस्थ हुई, कि जल थल मैयल पूर्या स्वामी सृजनहार। तो ये सृजनहार जल थल में समाया हुआ और अनक बांत हो पसरिया, कि ये अनेकों प्रकार से अनेकों रूपों में ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ये कायनात की रचना हुई है, ये अनेकों रंग रूप हमें, ये शक्लो सूरतें हमें दिखाई देती हैं, अनेकों प्रकार के जीव जंतु हैं। तो अनेकों रूपों में ये प्रभु परमात्मा ने अपने आप की अभिव्यक्ति की है रचना के रूप में। तो रचना और रचनहार में अंतर इतना ही है, हालांकि रचना में भी रचनहार बसता है, लेकिन फिर भी ये रचना से अलग-अलग है, जुदा है। जैसे कला और कलाकार, एक कलाकार कला बनाता है, लेकिन कला कलाकार नहीं हो जाती है। कलाकार सैकड़ों आकृतियां बना सकता है, हज़ारों पेंटिंग्स बना सकता है, लेकिन हज़ारों पेंटिंग्स हैं वो एक कलाकार नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से ये मूल को जानना बड़ा ज़रूरी है कि एक रचना और एक रचनहार। तो ये रचनहार ये परमात्मा है, ये ईश्वर है, अकाल पुरख है, और इसकी रचनाएं अनेकों रूपों में हैं, और इंसान इसी अनेकों रूपों वाली रचना में ही उलझ के रह जाता है। ये जानता नहीं है कि भले ही ये रूप अलग अलग हैं, वही बात कि माटी एक अनेक भांत कर साजी साजन हारे, कि मट्टी एक ही का इस्तेमाल करते हुए कुम्हार उसी से सुराही बना लेता है, उसी से घड़ा बना लेता है, उसी से कोई और एक शक्ल सूरत बना लेता है, कोई मूर्ति बना लेता है। तो माटी तो एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, और कुम्हार भी एक है, कुम्हार भी एक और मट्टी भी एक का इस्तेमाल, लेकिन रूप अलग अलग, रूप जुदा जुदा। तो ये जुदा जुदा रूप, जुदा जुदा आकृतियां बनाता है, लेकिन जो इस तथ्य से वाकिफ है कि ये कुम्हार भी एक है और मट्टी भी एक का ही इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर कहाँ पर एक अंतर आ गया, कहाँ पर ये भेदभाव खड़े हो गए। तो इस प्रकार से ये बोध होना बहुत ज़रूरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा कि एक को जानने वालों के लिए कोई बखेड़े नहीं हैं, कबीर जी ने भी इसी एक को जाना और एक में कोई फर्क नहीं है, ये उस वक़्त के समाज और लोगों को बताने के प्रयास किए, लेकिन वही कर्म कांडों में उलझे हुए लोग, शरा में बंधन में फंसे हुए लोग, जो इस हकीकत से अनजान रहे, भले ही अपने आप को धार्मिक और मजहबी मानते रहे, और उन्होंने कबीर जी को का ये भी पैगाम को बर्दाश्त नहीं किया कि ये एक कैसे कह रहे हैं। तो इसीलिए कबीर जी ने भी कहा कि जब हम एक को एक कर जानिया तब लोगन काहे दुख मानिया, कि जब मैंने एक को एक करके जान लिया है तो ये लोगों को क्यों तकलीफ़ हो रही है। तकलीफ़ उन्हीं को होती है जो एक होने नहीं देना चाहते किसी को, उनके लिए राम अलग ही रहना चाहिए और रहीम अलग ही रहना चाहिए। उन्हीं को तकलीफ़ हुई तब भी, और आज भी उन्हीं को ही तकलीफ़ होती है, लेकिन महापुरुष गुरु पीर पैगंबर वो एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमेशा ही अपने योगदान देते आए हैं, क्योंकि तमाम मानव जाति का इसी में ही भला है। ये विभाजन और ये अलगाववाद, ये अलग-अलग रहना, ये बेगानेपन की भावना ने आज तक कोई भलाई की है? क्या धरती को सुकून दिया है? क्या यहाँ पर मिलवर्तन बढ़े हैं? या फिर नुकसान ही नुकसान हुए हैं। तो महापुरुष संत जनों ने ये पैगाम इसलिए दिया क्योंकि तमाम मानव जाति का भला इसी में ही छिपा हुआ है, और इसीलिए उनके संदेश, चाहे वो राम जी के रूप में दिए गए, चाहे कृष्ण जी के रूप में दिए गए, चाहे हज़रत ईसा मसीह जी के रूप में दिए गए, हज़रत मोहम्मद साहब के रूप में दिए गए, या फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज के रूप में दिए गए, या कबीर जी, रविदास जी, या मीराबाई, या तुकाराम जी, नामदेव जी, अनेकों अनेकों ऐसी रूप इस धरती के ऊपर जन्म लेते आए हैं, और उन्होंने यही इंसान को जागृति देने के प्रयास किए हैं। लेकिन इंसान इस गफलत की नींद में गहरा इस कदर सोया हुआ, ये इससे उभरता नहीं है, इस अज्ञानता के अंधकार को ही ढोता रहता है और उसका उजाले से सामना नहीं होता है। वो उजाले में इस प्रकार से वे विचरण नहीं करता है और इसीलिए ये दूरियां बनी रहती हैं इंसान और इंसान के दरमियान, क्योंकि परमात्मा से दूरी बनी हुई है। जब परमात्मा से ही दूरी बनी हुई है तो इंसानों से नज़दीकत कैसे हो सकती है? तो अगर परमात्मा से ही नज़दीकत पैदा हो जाती है, इससे नाता जुड़ जाता है, इसका बोध हो जाता है, तो फिर इंसान और इंसान के दरमियान जो दूरी है वो भी दूर हो जाती है, वरना ये दूरियां बनी रहती हैं, ये कभी भी नारों से ख़त्म नहीं हुई हैं। पीछे भी दास ने जिक्र किया कि जब 60 के दशक के आरंभ में बहुत ज़ोरों से नारे लगे थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, जब चाइना यानी कि चीन से वहाँ का सबसे बड़ा लीडर यहाँ पहुँचा और यहाँ के हिंदुस्तान के सरकार के लीडर्स को मिला और चारों तरफ ऐसा जोश, हिंदुस्तानी जो संस्कृति उस हिसाब से बहुत आवभगत भी की गई और बहुत नारे भी लगाए गए उनकी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी, कि हिंदी चीनी भाई भाई। लेकिन वो नारे तो रहे, लेकिन वही लीडर जब अपने मुल्क वापस लौटा, थोड़े दिनों के वक्फे के बाद ही हिंदुस्तान पे हमले का ऑर्डर भी कर दिया, जो चाइना वॉर हमारी हुई और आज तक हम वो भुगत रहे हैं। तो ये नारों से नहीं होता है, जितने मर्जी हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई के नारे लगा दें, इससे नहीं होने वाला है। जब तक ये बोध नहीं होता है, जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होती है, जब तक ये ज्ञान नहीं इसके साथ जुड़ता, तब तक फिर नारे नारे ही रह जाते हैं, महापुरुषों की वाणी अपनी जगह पर ही रह जाती है। उससे हमने नहीं लाभ उठाया, हमने उस अवस्था को प्राप्त नहीं किया, हमने वो नाता जोड़ा नहीं है, तो इसलिए हम उसी पिछड़ेपन में रहते हैं, उसी बंधन में रहते हैं, उन्हीं भ्रांतियों में रहते हैं और यही अंधकार के रूप को ढोते रहते हैं। और ना परलोक सवरता है, ना लोक सवरता है, ना आत्मा का कल्याण होता है, ना जीवन जीने का सलीका आता है। जिए तो जिए तेरी दुनिया में उल्फत व मोहब्बत समझे नहीं, कि ये जीने का सलीका नहीं आया और मोक्ष की भी आत्मा को प्राप्ति नहीं हुई। यानी कि दोनों जहानों की बाजी हार कर जाने वालों की बौताधर ये रही है, और इसीलिए महापुरुष इंसानों को ये पैगाम और ये संदेश ये देते आए हैं कि हे इंसान, तू ये जागरूकता में आ जा, इस जागृति को प्राप्त कर ले, इस प्रभु परमात्मा ईश्वर, इस पारब्रह्म निराकार के साथ ही अपना नाता जोड़ ले, इसकी पहचान कर ले, और जिससे नाता जोड़ कर ये कल्याण होना है, लोक परलोक संवरना है, तो जिससे नाता जोड़ने की बात की जा रही है, तो आखिर ये है कहाँ पर? और फिर अज्ञानता प्रमाणित होती है जब ये कहा जाता है कि वो तो सातों आसमानों के ऊपर बैठा हुआ है, या फिर ये कह सुनाई दे जाता है कि वो तो फलां गुफा में मौजूद है, या वो फलां दिशा में मौजूद है। इस प्रकार से अज्ञानता के ये प्रमाण ये दिए जाते रहे हैं और आज भी दिए जा रहे हैं। तो महापुरुष संत जन वो इंसान की जब इस अज्ञानता को दूर करते हैं, यही बताकर, यही समझाकर, यही इशारा देकर कि कहाँ पर इसको दूर मान बैठा है, जिससे नाता जोड़कर ये सारा इंसान का हारना और जीतने का दारोमदार टिका हुआ है, तो फिर महापुरुष संत जन ऐसा इशारा करते हैं और ये हमारे ज्ञान की नज़र हमें दे देते हैं और फिर हम आप ही कह उठते हैं कि जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा हो बहू है, कि वास्तविकता में जिस दिशा की तरफ मुख कर लूँ तेरा नज़ारा है, तेरा ही नज़ारा ले रहा हूँ, तेरी क्योंकि हर जर्रे में मौजूदगी है, हर दिशा में मौजूदगी है। तो इसलिए वो नज़र मिली, इसलिए ये कहने वालों ने नहीं ये कहा और ये महसूस करते हुए इस जीवन के सफ़र को तय किया। तो सातों आसमानों में या फलां गुफा या कंदरा में इत्यादि जो मान्यताओं से युक्त हैं वो अपनी ही अज्ञानता को प्रमाणित करते हैं। जिन्होंने जाना उन्होंने फिर यही कहा कि शह रग थी रबसदा नेड़े लोका पाए लंबे छेड़े, कि जो शह रग से भी नज़दीक है, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, जितना करीब खुदा है उससे करीब और कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जो शह रग जो है हमारी रग, इससे भी नज़दीक है। तो लेकिन कह रहे हैं सूफी महापुरुष की शह रग थी रबसदा नेड़े लोका पाए लंबे छेड़े, कि लोगों ने खाम खा के झगड़े पैदा किए हुए हैं, खाम खा के भ्रमों में जी रहे हैं कि ये तो नज़दीक है, जितना करीब खुदा है उतना करीब ना कोई, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। कबीर जी कहते हैं कि खुदा कह रहा है कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास हूँ। वस्त कहीं ढूंढत कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ, कि जब भेदी मिल गया तो फिर ये भटकन समाप्त हो गई, ये भ्रमों से हमें निजात मिल गया और इस प्रभु को जहाँ पर है वहाँ पर इसकी प्राप्ति हो गई, इससे मिलन हो गया। मंजिल पे खड़े होकर होने के बावजूद मंजिल से अनजान, उसी तरह से जैसे मछली जल में रहती है और फिर वो मछली जो जल से अनजान है वो भटकती है जहाँ तहाँ, जल की खोज कर रही है, नहीं जानती कि जल ही में तो वो रह रही है। इसी प्रकार से ये अज्ञानता के अंधकार में विचरण करने वाले ना आत्मा को ठहराव देते हैं, आत्मा भी आवागमन के बंधन में पड़ी रहती है, कभी ये शरीर कभी वो शरीर, शरीर धारण करती रहती है या सूक्ष्म रूप में भटकती रहती है, इसको कोई ठौर ठिकाना नहीं मिलता है। इसलिए निज घर की प्राप्ति के शब्द जो हम सुनते हैं कि आत्मा का निज घर परमात्मा है, ये कोई गारे ईंट से बना हुए मकान ये आत्मा के घर नहीं है, ये निज घर नहीं है। और देखा जाए तो ये शरीर के भी ये मकान ये निज घर नहीं है, शरीर के संदर्भ में भी अगर सोचें, क्योंकि ये खुद खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा, तो कहाँ पर इसका फिर ये मकान, ये महल, इसका टिकाना, यानी कि शरीर के लिहाज से भी असल टिकाने नहीं हमारे महल माड़ियाँ, और आत्मा तो फिर दूर की बात है। तो आत्मा का निज घर है ये परमात्मा, जिसकी अंश है, अगर नहीं जानती तो भटकती रहेगी। तो इसलिए वो भी कार्य इसी जीवन की यात्रा को तय करते हुए ये इलाज ढूंढना है, ये सामान जुटाना है, ये एक ढंग अपनाना है इसी लोक की यात्रा को तय करते हुए। आत्मा का कल्याण भी इसी लोक में करना है, ये परलोक में नहीं होने वाला है, कि जब शरीर से नाता टूटेगा तो आत्मा का कल्याण हो जाएगा, ये अपने मूल में मिल जाएगी, क्योंकि जो मूल है वो भी नाशवान नहीं है और आत्मा भी नाश नहीं होती। तो अगर यही बात है तो फिर कातिल चोर डाकू उनकी भी आत्मा का नाश नहीं होता, फिर तो वो भी परमात्मा में मिल गए, फिर तो नेकी और बदी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो एक समान, फिर तो ज्ञान और अज्ञानता फिर तो एक समान। अगर शरीर के बर्तन के टूटने से ही आत्मा ने अपने मूल में मिल जाना है, तो फिर तो ये तमाम वेद शास्त्र धर्म ग्रंथ ये पैगाम इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं, फिर तो एक ही असूल लागू। नहीं, परलोक भी सवरता है, आत्मा का कल्याण भी होता है इसी परलोक में। जब इस जिस्म में, मानव जिस्म में ये आत्मा आती है, इसको सुनहरी मौका मिल जाता है कि अपने आवागमन के बंधनों से ये छुटकारा पा ले, इसका बोध हासिल करके, इसको जानकर और इस मूल को जानकर अपने स्वयं की असली पहचान करके। क्योंकि अपने स्वयं की ही पहचान नहीं होती, क्योंकि मूल को ही नहीं जाना है। और इसीलिए जहाँ से बात आरंभ की थी कि स्वयं की पहचान नहीं है, मूल को क्योंकि नहीं जाना, इसीलिए अपने आप की पहचान हमारी ये बन के रह जाती है कि मैं हरियाणवी, मैं गुजराती, मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, मैं ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो हरिजन, वो वैश्य, वो अमेरिकन, वो कनेडियन, वो हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तानी इत्यादि, वो औरत, मैं मर्द, ये बच्चा, वो बुज़ुर्ग, ये जवान। तो इन सब तकाज़ों से ऊपर एक आत्मा का रूप, ये नूर, मूल का आधार, इस मूल की अंश, इसमें कोई फिर और सवाल नहीं रह जाते हैं, कोई और पहचाने नहीं रह जाती हैं। तो जब मूल को नहीं जाना तो स्वयं की पहचान नहीं। इसीलिए अंग्रेज़ी में कहते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ, हमारा ट्रू सेल्फ, हमारा असली वजूद, ये जिस्मानी वजूद नहीं, ये हमारा असली वजूद नहीं है, ये आत्मिक दृष्टि से कहा गया है कि हमारी ट्रू एंटिटी, हमारा असली वजूद एक आत्मा के रूप में है। तो ये सेल्फ को जान लिया, स्वयं को जान लिया, तभी हमारे ये भ्रम मिटते हैं। और सेल्फ की पहचान हो नहीं सकती जब तक इस मूल को नहीं जाना है, इस गॉड को नहीं जाना है। तो सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि ये सेल्फ की पहचान होती है परमात्मा की पहचान कर लेने के बाद, उससे पहले नहीं। अगर बूंद बूंद ही रहती है और सागर से कभी सामना ही नहीं हुआ, तो बूंद का असली जो वजूद है उससे अनजान रहेगी, क्योंकि सागर से सामना ही नहीं हुआ है, वो अपनी उसी सीमा में और उसी को असलियत मानकर चल रही है। इसी प्रकार से अज्ञानता में रहने वाले अपने स्वयं की पहचान नहीं कर पाते, और इसीलिए फिर मन के भी भाव उसी अनुसार बन जाते हैं, मन का अंधकार उसी तरह से कायम रहता है, और मन में फिर दीवारें खड़ी होती हैं, मन में फिर वैर, घृणा, नफरत के बीज पनपते हैं, फिर हम औरों के भी नुकसान करते हैं, फिर हम दीवारें खड़ी करते हैं, दरारें पैदा करते हैं, फिर एक दूसरे को नीची दृष्टि से देखते हैं, फिर जुल्म व सितम करते हैं, और इसी मार्ग पर चलते हुए अपने आप का भी नुकसान करते हैं, औरों का भी नुकसान करते हैं। तो महापुरुष संत जनों ने बचाव का साधन बताया है, उन्होंने बताया है कि किस विधि ये बचाव हो सकता है, तुम्हारी आत्मा का भी और तुम्हारा ये जो जीवन का भी जो एक महत्व है वो किस प्रकार से बन सकता है, ये उन्होंने विधियाँ बताई हैं, वो ढंग ये बताए हैं। और यही विधि, यही ढंग जिस जिसने भी अपना ली, उसने ही अपना उद्धार और अपना ये कल्याण कर लिया है, क्योंकि ये इन श्वासों का कोई भरवासा नहीं है कि श्वास, ये जीवन लीला ये कितनी देर चलनी है, ये किसी को कुछ नहीं पता है, एक पल में क्या होता है और दूसरे पल में क्या से क्या हो जाता है, ये लगातार हम देख ही रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं चलता है कि जीवन का सिलसिला कितनी देर है, یہ جسمانی یاترا کتنی دیر ہے، یہ پانی کا بلبلا اس مانس کی جان، کہ یہ تو پانی کا بلبلا کے سمان ہے، کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبلا ہے پانی کا، کہ کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، کہ آدمی تو ایک بلبلے کے سمان ہے، ادھر بلبلا بنا، ابھی ہم اس بلبلے کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پاتے اور وہ آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جاتا ہے۔ ایک آسمان میں چمکتی ہوئی بجلی ابھی چمکی ہے، ابھی ٹھنگ سے دیکھ بھی نہیں پائے اور آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جاتی ہے۔ تو اسی پرکار سے یہ انسان، یہ تیرے سانسوں کی لڑی بھی ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے، یہ کہیں نہ کہیں یہ لڑی ٹوٹ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں ان سانسوں کا رکنا ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب یہی پتہ نہیں ہے کہ کب وہ گھڑی آ جانی ہے، اس لیے دیری کس لیے، اس لیے اس کو آگے پہ کیوں ڈالا جا رہا ہے، یہ کیوں پھر ٹال مٹول کی جا رہی ہے، کیوں اس کی اندیکھی کی جا رہی ہے، جس کے اوپر اتنا بڑا دار و مدار ٹکا ہوا ہے، اسی کو ہی سیریسلی نہیں لیا جا رہا ہے، اسی کو ہی اہمیت نہیں دی جا رہی ہے۔ اہمیت دیتے چلے جا رہے ہیں اس کو جو چھن بھنگور ہے، جس سے آتما کا بھی کلیان ہونے والا نہیں ہے، جس سے یہ لوک بھی سنورنے والا نہیں ہے۔ تو ان کے لیے تو ہم جاگروک ہیں، سجگ ہیں، ان میں غلطان ہیں، لیکن اس سے سنورتا نہیں ہے کچھ بھی۔ تو یہ سنورنے کا جو سادھن ہے وہ یہی بتایا گیا ہے کہ ایک مالک خالق پرماتما ایشور جو سچلی، جو سچا رتن ہے، جو سچا دھن ہے، جس دھن کے دوارا سبھی امیر ہو سکتے ہیں، ایسی دولت کے تلیہ اور کوئی دولت نہیں ہے۔ تو ایسی سچی دولت کو پراپت کر لے، اس کو اجالا بھی کہا ہے، اس کو دولت بھی کہا ہے، یہ رام رتن دھن پایو میرا بھائی بھی کہہ رہی ہے، اس کو رام رتن دھن کہہ رہی ہے، اس کو سچلی سچا دھن کہا جا رہا ہے، کہ کبیر سب جگ نردھنا دھنونتا نہیں کوئے، دھنونتا سو جانیے جا کے رام نام دھن ہوئے، کہ دھنوان وہی ہے جو واسکتا میں اس سچے رتن دھن کو پراپت کر لیتا ہے۔ تو اس پرکار سے اسی کو گیان اجالا بھی کہا جا رہا ہے، کہ اجالا بھی کہا جا رہا ہے، اس کو پریم کا روپ بھی کہا جا رہا ہے، یہ پریم کا سروت بھی ہے۔ کتنے گن اس مالک پربھو پرماتما میں ہیں، تو اسی کی طرف یہ دھیان مہاپرش آج بھی دلا رہے تھے، تاکہ انسان اس کی طرف غور کریں اور ابھار لیں اپنے آپ کو اس دلدل سے، اور گراوٹ کی اور جاتے ہوئے جیون کو سنبھال لیں، اونچائیوں کی طرف چلیں، اور اونچائیاں یا کلیان یا ادھار یا موکش یا پھر یہ بودھ، یہ سب برہم گیانیوں کا سنگ کر کے ہی سمبھو ہوا کرتا ہے، یہ سنتوں کا سنگ کر کے ہی یہ سمبھو ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے رام جی نے بھی شبری کو نودا بھکتی سمجھاتے ہوئے پہلا قدم ہی یہی بتایا کہ پرتھم بھکتی سنتن کر سنگا، کہ پہلا ہی قدم یہی بتایا ہے کہ سنتوں کا سنگ کرنا ہے، سنگت کریے سادھ کی انت کرے نرباؤ ساکت سنگ نہ کیجیے جاتے ہوئے بناؤ، کہ سنگت کریے سادھو کی، کہ سادھو کا سنتوں کا سنگ کر لیا تو انہوں نے آتما کا ناتا پرماتما سے جوڑ دیا، یہ اجالا کر دیا جیون میں، من اور آتما روشن کر دی اور جیون جینے کا سلیقہ بھی بتا دیا، ایسے دیو گنوں سے یکت ہو کر جیون جینے کی کلا بھی سکھا دی۔ تو اس پرکار سے یہ سنتوں کے سنگ کا ہی یہ مہتو ہے، اسی کا ہی یہ پرتاپ ہے کہ انسان گراوٹ سے ابھر جاتے ہیں، اونچائیوں کو پراپت کر لیتے ہیں۔ جیسے مہاپرش کہتے ہیں کہ گگن چڑھے رج پون پرسنگا، کیچیو ملے نیچ جل سنگا، کہ گگن آسمان کو چھو لیتی ہے وہ دھولی، جو ہوا کا سنگ جس کو مل جاتا ہے، وہ ہوا اڑا کر اس دھول کو آسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو اسی پرکار سے کہہ رہے ہیں کہ گگن چڑھے رج، رج یعنی کہ دھول، گگن چڑھے رج پون پرسنگا، پون کا سنگ کر کے، ہوا کا سنگ کر کے، وہ رج دھول آسمانوں کو چھو گئی، और दूसरी तरफ कीचियों मिले नीच जल संगा, और अगर उसी धूल ने पानी का संग कर लिया तो वो कीचड़ बन जाती है, और कीचड़ में लथपथ हमारे कपड़े, हमारे चेहरा, हमारे शरीर, तो कहते हैं तो कीचड़ ने सब कुछ ही खराब कर दिया है, क्योंकि वो संग ऐसा मिल गया। ये समझाने के प्रयास है, वरना तो जब ये मिसाल दी गई कि कीचियों मिले नीच जल संगा, तो जल का संग करके धूल कीचड़ बन गई, ये हकीकत है, ये हकीकत है कि तभी हम उसको कीचड़ का नाम देते हैं। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि साकत का संग मिलता है, वो भी वो कीचड़ वाला ही रूप हमें दे देता है, हमारा लोक और परलोक दोनों ही बिगाड़ देता है। जब हम साकत का, मनमुख का, अज्ञानी का संग करते हैं, उससे कल्याण तो दूर की बात, उससे तो बिगाड़ ही होना है। तो संतों का संग करने की का महत्व बताया गया है कि संगत करिए साधु की, अंत करे निर्भाव साकत संग न कीजिए जाते हुए बिनाओ, कि साकत के संग से विनाश होता है, और संगत करिए साधु की, कि साधु की संगत करते हैं तो फिर हमें ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं, और हम अपना लोक भी और परलोक भी ये दोनों सवार लेते हैं, और फिर मुख उजला हो जाता है, फिर कामयाबी मिल जाती है हमें, और फिर मुबारकबाद के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि जिस जन्म को पाया हीरे जैसा जन्म, हमने उसकी कीमत डाल दी, उसको कौड़ियों के भाव नहीं गवाया है, केवल दुनियादारी तक नहीं सीमित अपने आप को रखा है। तो इसलिए हमने हीरे जैसे जन्म की पूरी पूरी कीमत डाल ली है, और अपना जन्म सफल कर लिया है, और मुख उजला कर लिया है, अब फिर सुरखरू होकर इस संसार से जा रहे हैं। जब कभी भी संसार से जाना होगा तो सुरखरू होकर जाते हैं, जन्मों जन्मों का बोझ और बंधन उतार कर जाते हैं। तो इसलिए ये अवसर, ये मौका, ये कोई ना हाथों से जाने दे, इसीलिए महापुरुष ये पैगाम और संदेश टंके की चोट पर आवाज़ दे रहे हैं कि करूं विनंती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहां खाट चलो हरी लाह, आगे बसे सुहेला। तो इसलिए ये संदेश, ये पैगाम, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में दिया गया है, क्योंकि जब कल्याण का साधन ही एक है, फिर सतयुग में पैदा हुआ क्या, और कलयुग में पैदा हुआ क्या, और त्रेता द्वापर में पैदा हुआ क्या, जब असूल हमेशा के लिए लागू है कि आत्मा का उद्धार इस परमात्मा से नाता जोड़े बगैर होने वाला नहीं है। ये सतयुग में भी असूल था, और आज कलयुग कह रहे हैं इसमें भी यही असूल कायम है, और वो भी असूल कायम है कि महत्व उन्हीं का है जो मानवता की डगर पर चलते हैं, प्यार, निम्रता और करुणा, दया के भाव से युक्त होकर जीते हैं, वही अपना रुतबा बुलंद करते हैं, वही औरों के लिए राहत बनते हैं, वही धर्म को भी जिंदा रखते हैं, वही मानवता का भी रुतबा एक ऊंचा कराते हैं। तो यही तो असूल हैं, ये हर युग हर दौर में लागू हैं। तो आज वर्तमान में जीने वाले इसी पैगाम को जब सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी इन्हीं संदेशों का महत्व है, और यही कदम हर किसी को उठाने होंगे, इससे बगैर ये कल्याण होने वाला नहीं। तो दास और अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफ़ी अधिक हो चुका है, और फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो यहाँ आकर प्राप्त हुए, और ये भी आपको मालूम है और जिक्र आपने सुना कि केवल दो रोज़ पहले ही दास ने कल रोहतक में भी यही जिक्र किया कि शुक्रवार फ्राइडे सुबह ही जब सुबह सैर करने निकले, और सैर करते करते ही ऐसा ध्यान आया कि दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते से मसूरी से आकर रह रहे हैं, और हर बुधवार रविवार कहीं ना कहीं दिल्ली में सत्संग हो रहा है, और इतवार को भी, तो कहीं दिल्ली के आसपास के इलाकों में जाने का अवसर बने। तो ऐसे ही ध्यान आया कि यहाँ महेंद्रगढ़ में आए हुए आने का मौका पहले कभी नहीं मिला, तो बड़े अरसे से यहाँ के महापुरुष चाना रखे हुए, तो इसलिए ऐसा ही ध्यान आया कि यहाँ पर आया जाए और आप सभी के दर्शन किए जाएं। और इसीलिए ये दो दिन पहले ही ऐसा जो ध्यान आया और दो दिनों में ही आप सभी ने उत्साह भी दिखाया और ये आयोजन भी किया और इस प्रकार से ये सत्संग आनंदमय ढंग से निभाया गया है, जिसमें एक एक वचन का आनंद लिया गया है। जो भी महापुरुषों ने अपने भाव रखे, दर्शनों से भी आनंद लिया गया है। अब यही अरदास की दातार कृपा करें कि जिन्होंने अभी ये सच की दौलत को पाया नहीं है वो प्राप्त करें, और जिन्होंने पाया है वो इस दौलत का पूरा पूरा इस्तेमाल करें, ज्ञान को जिए और एक सुंदर ढंग से जीवन के सफ़र को तय करें। सत्संग जी धन्यवाद।